सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक 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 रेल चली है जीवन की।
भारतीय रेल की इस कहानी की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में। उस दिन वहां सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। दोपहर 3:30 बजे 21 तोपों की सलामी के साथ ठाणे के लिए पहली बार एक ट्रेन रवाना हुई थी। उस पर सवार थे बंबई के गवर्नर फॉकलैंड की पत्नी लेडी फॉकलैंड और 400 अति विशिष्ट आमंत्रित लोग। अगर 1846 में अमेरिका में कपास की फसल बर्बाद नहीं हुई होती तो शायद रेलवे को भारत में आने में थोड़ा समय और लगता। द परवेयर्स ऑफ डेस्टिनी, अ कल्चरल बायोग्राफी ऑफ द इंडियन रेलवेज के लेखक अरूप चैटर्जी बताते हैं।
1857 में जब जंग छिड़ी, म्यूटिनी के दौरान अंग्रेजों ने समझा कलकत्ता से दिल्ली का लाइन जो द्वारकानाथ भी करना चाहते थे उसको एक्सटेंड कर दिया जाता, उनके मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते। कॉटन क्रॉप फेलियर काफ़ी जगह पे हुए हैं, एक तो इंग्लैंड में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है, और उस वजह से अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ के जूट और कॉटन प्लांटेशंस को एक्सप्लॉयट करके, यानी हुगली रिवर के आसपास या फिर हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के वहाँ पे, उसको मैनचेस्टर तक पहुँचाया जाए। और उस दौरान इंडियन रेलवेज काफ़ी हावी हुआ इंडियन इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि इंडिया दे रहा था 18,000 पाउंड हर मील के लिए, जबकि वही लाइन जब अगर बनती ब्रिटेन में या यूनाइटेड स्टेट्स में तो उसका खर्चा आता 2,000 पाउंड। सो इंडिया वॉज स्पेंडिंग 9 times more, 9 गुना ज़्यादा वो खर्च कर रहे थे, यानी उनसे करवाया जा रहा था। तो जो पैसेंजर ट्रेन से जो अंग्रेज कमाते थे वो फ्रेट ट्रेन्स में बचाते थे और दोबारा वही एक्सपेंडिचर रेलवे एक्सपेंशन में किया जाता था। 1870 और 80 के दशक में फैमिन्स हुए साउथ इंडिया में, डेक्कन में, जिनमें रेलवेज का किरदार ये था कि फैमिन से बचाएं, दे वर सपोज टू बी द फैमिन हीलर्स। हालांकि 2 मिलियन लोगों की मौतें हो गई।
5 सालों में ही रेलवे का जादू इस कदर बोलने लगा था कि दिल्ली की गद्दी से अपदस्त आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भारतवासियों से वादा किया था कि अगर उन्हें दोबारा गद्दी मिलती है तो वो भारत में रेलवे लाइनों का जाल बिछवा देंगे।
आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जिसे कहा जाता है, जो डॉक्यूमेंट जो दिल्ली गजट में पब्लिश हुआ था सन 1857 में सितंबर के महीने में, उन्होंने वायदा किया था इंडियन मर्चेंट्स को कि अगर आप हमें राजा के तौर पे खड़ा करेंगे, जब दिल्ली को आज़ादी मिल जाएगी, हम आपको हमारे इंडियन ओन्ड रेल कार्स देंगे, हमारे लाइन बिछाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें अंग्रेजी जो बेनिफिट्स थे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स थे, उनसे नफरत नहीं थी, और अगर नफरत थी भी तो उसे बहुत अच्छे तरह से कैमोफ्लाज किया गया था और उसे अपने यूज़ में हमने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करना सीख गया था। ये अलग बात है कि दिल्ली को आज़ादी नहीं मिली और हमें अंग्रेज रेल से ही गुजारा करना पड़ा।
भारत के लोगों के रेलवे के साथ रोमांस को न सिर्फ भारतीय साहित्य बल्कि हिंदी फिल्मों में भी पर्याप्त जगह मिली है। याद कीजिए आराधना, द बर्निंग ट्रेन, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परिणीता और दिल से।
रेलवेज को भी आप एक चरित्र जैसा ही समझ सकते हैं, और जब हम सन 1969 में आते हैं आराधना फिल्म में मेरे सपनों की रानी, तब रेलवे एक अजीबोगरीब चरित्र आजमाता है और रेलवे खुद ही एक क्वीन बन जाता है। तो हम रेल में सफ़र करते हुए शर्मिला टैगोर को जब देखते हैं और वहाँ पे राजेश खन्ना को देखते हैं, तो इन दोनों के मिलन में, मिलन को फैसिलिटेट जो कर रहा है जो व्हीकल, वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, लेकिन रेलवे खुद ही एक फेमिनाइजेशन से गुजरता है, यानी उनको एक स्त्री का दर्जा दिया जाता है, एक खूबसूरत एक प्रिंसेस का दर्जा दिया जाता है इस गाने में।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
और इसके बाद हम देखते हैं एक फिल्म आती है इजाजत, जहाँ पे एक छोटे से टाउन का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे दो प्रेमी काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, उनका सेपरेशन हो गया है पति और पत्नी का। तो रेलवेज बड़े शहरों से लेके छोटे शहरों तक भी पहुँच जाती है।
मेरा कुछ सा...
लेकिन इन सब के बीच में, इन सब के लोकस में एक बहुत एपिकल फिल्म आया था शोले, और वह 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। शोले हमें समझाता है कि एक टाउन के जन्म लेने के पीछे जिस इंडस्ट्री का हाथ है वो है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज इस टाउन में जो जिसका नाम है रामगढ़, लाता है सभ्यता, और ये लाता है जय और वीरू को। तो जय और वीरू सभ्यता के दो किरदार नहीं है, हालांकि वो सभ्यता लाने में मदद करते हैं। सभ्यता कैसे? क्योंकि इस टाउन को हमें गब्बर से बचाना है, और वो पहला सीन जहाँ पे धुआं छोड़ता हुआ वो इंजन टाउन में आ रहा है, तो वो एक गूंज, एक खामोश सी गूंज हमारे आंखों के सामने हमें दिखने लगती है, और वो गूंज हमें कानों से महसूस ना होते हुए हमें आंखों से उसका स्टीम इंजन का जो नज़ारा है वो ज़्यादा महसूस होता है।
स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है।
पाकीज़ा फिल्म का वो सीन भी याद कीजिए जब राजकुमार एक ट्रेन में चढ़ते हैं जहां मीना कुमारी सोई हुई हैं, और वो उनके लिए कागज पर एक नोट लिखकर छोड़ जाते हैं।
आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।
हालांकि अंग्रेज ये कतई नहीं चाहते होंगे, लेकिन रेलवे ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका के नगर पीटरमैरिट्सबर्ग में, जहां एक रात एक गोरे ने फर्स्ट क्लास के रेलवे के डिब्बे से महात्मा गांधी का सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। बाद में रेलवे का जितना अधिक राजनीतिक इस्तेमाल गांधी ने किया उतना शायद किसी भारतीय राजनेता ने नहीं।
बहुत अजीब बात है कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट क्लास छोड़ के ट्रैवल नहीं करता, और वहाँ पे सन 1893 में पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन में उन्हें उतार दिया गया, क्योंकि उन्होंने मैट्रेस नहीं लिया था। उन्होंने चूंकि एक्स्ट्रा पे नहीं किया था, इस वजह से एक मुठभेड़ हो गई, और उनको चूंकि वो हिंदुस्तानी थे, वो गोरे नहीं थे, उनको उतार दिया गया। वो जो भूत उनके सर पे चढ़ा वो जाके हावी हुआ 30 साल बाद अंग्रेज सरकार पे, और महात्मा गांधी एक उनको एक ऐसी एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया था रेलवे, इंडियन रेलवेज के वजह से, कि लोग रेलवे के नीचे आ जाते थे, बोलते थे कि आप ट्रेन चला दो, हम यहीं पे सो जाएंगे, हमें दर्शन चाहिए महात्मा गांधी का। रेलवे प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने कांग्रेस नेशनलिस्ट्स के आंदोलन का एक थिएटर बना दिया, वहाँ वो एक रंगमंच बन गया जहाँ पे नेशनलिस्ट्स आते थे, कांग्रेस वाले आके खुद बोलते थे हमें अरेस्ट करो, उनको अरेस्ट किया भी जाता था।
एक बार गांधी ने भारतीय ट्रेन में अपना अनुभव बताते हुए लिखा था,
हम बैंगलोर से रात की ट्रेन से मद्रास जा रहे थे, हमें एक रात के आराम की ज़रूरत थी, लेकिन हमें वो नसीब नहीं हुआ। आधी रात को हम लोग जोलारपेट जंक्शन पहुंचे, ट्रेन को वहां 40 मिनट रुकना था। मौलाना शौकत अली ने भीड़ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो जितना अनुरोध करते वो उतनी ही ज़ोर से चिल्लाती, मौलाना शौकत अली की जय। आखिर में मौलाना ने हार मान ली और वो सोने का नाटक करने लगे। लोग डिब्बे की खिड़की से उचक उचक कर मौलाना को देखने लगे। हमने जैसे ही डिब्बे की लाइट बुझाई वो लालटेने ले आए। आखिर में मैंने सोचा कि मैं ही कुछ कोशिश करता हूँ। मैं उठा और दरवाजे की तरफ गया। मुझे देखते ही लोग खुशी से चिल्ला पड़े, लेकिन मेरी किसी बात का उन पर असर नहीं हुआ। थक हार कर मैंने खिड़कियाँ बंद कर ली, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। वो बाहर से खिड़कियों को खोलने की कोशिश करने लगे। अपनी समझ में वो हमारे प्रति अपना प्यार दिखा रहे थे, लेकिन वास्तव में वो कितने क्रूर थे।
महात्मा गांधी और ट्रेन के संबंध का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रमोद कपूर ने गांधी पर लिखी जीवनी में किया है। गांधी और उनके बेटे हरिलाल गांधी में अनबन हो गई थी और वो घर छोड़कर चले गए थे। प्रमोद कपूर बताते हैं,
इनको पता लगा हरिलाल को कि कटनी जंक्शन से गांधी जी और कस्तूरबा पास कर रहे हो, तो ये बुरी कंडीशन में थे, ज़रूर मतलब ड्रंक थे, और उन्होंने वहाँ नारे लगाना शुरू किया, कस्तूरबा माँ की जय, कस्तूरबा माँ की जय। तो लोगों ने देखा कि ये कौन आदमी है भाई, कि ये सब लोग तो महात्मा गांधी की जय कर रहे हैं, एक को पीछे से चिल्ला रहा है। तो इन्होंने देखा अपने कंपार्टमेंट से कि हरिलाल था वहाँ पर, तो उसको बुलाया गया, वहाँ गए ये। और तब तक ट्रेन चलने लगी तो संतरा जो है उन्होंने अपनी माँ को दिया और कहा कि ये इसको खाने मत देना, इसको मत खाने देना, आप खाना, आप खाना। तो ये बड़ा, इट वॉज अ वेरी पॉइग्नेंट मोमेंट, यू नो।
1928 में भगत सिंह ने भी लाहौर से कलकत्ता भागने के लिए ट्रेन का सहारा लिया था। ईश्वर दयाल गौड़ अपनी किताब मार्टियर्स एज ब्राइड ग्रूम ए फोक रिप्रेजेंटेशन ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं,
साउंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने 17 दिसंबर 1928 की रात लाहौर के डीएवी कॉलेज के अहाते में बिताई। अगली सुबह भगत सिंह भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी के यहाँ चले गए। उन्होंने तय किया कि वो वहाँ से कलकत्ता जाएंगे। भगत सिंह ने साहब का वेश धारण किया, दुर्गा देवी उनकी पत्नी बनी और राजगुरु उनके नौकर। शाम को ये ड्रामा पार्टी एक तांगे पर लाहौर स्टेशन पहुंची, जहां से उन्होंने कलकत्ता के लिए फर्स्ट क्लास के 2 टिकट खरीदे। नौकर राजगुरु और साधु के वेश में चंद्रशेखर आज़ाद 3rd दर्जे के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। रास्ते भर आज़ाद तुलसीदास के दोहे गाते रहे। ड्रामे को वास्तविक रूप देने के लिए साहब भगत सिंह लखनऊ स्टेशन पर चाय पीने उतरे, नौकर राजगुरु दूध की तलाश में अलग से उतरे और साधु चंद्रशेखर आज़ाद ने स्टेशन के नल से पानी पिया। कलकत्ता पहुंचते ही साहब ने अपना ओवरकोट उतारकर बंगालियों की पोशाक धोती कुर्ता पहन लिया।
भारतीय रेलवे से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां हैं। एक बार कोलकाता हाई कोर्ट के पहले भारतीय चीफ जस्टिस आशुतोष मुखर्जी को एक अंग्रेज ने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में अपमानित करने की कोशिश की थी।
आशुतोष मुखर्जी जा रहे हैं एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, और एक ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट चढ़ते हैं ट्रेन में। उनको दिखता है कि एक इंडियन इस सीट में सो रहा है और वो उनका चप्पल फेंक देते हैं बाहर। अगले दिन जब वो अंग्रेज इंडस्ट्रियलिस्ट उठता है और देखता है कि उसका जैकेट गायब है, तो वो पूछता है मेरा जैकेट कहाँ है, और आशुतोष मुखर्जी कहते हैं कि आपका कोट वहीं है जहाँ आपने मेरे स्लीपर्स फेंके थे, यानी एक दूसरे को ढूंढने गए हैं।
भारतीय रेल और चाय का रिश्ता भी बहुत पुराना है। उत्तरी भारत के रेलवे स्टेशनों में अभी भी यात्री की आंख खुलते ही पहली आवाज जो उसके कान में गूंजती है वो है चाय गरम।
अंग्रेजों ने, ऐसा अंग्रेजों का मानना है, हिंदुस्तानियों को चाय पिलाना सिखाया, और इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1880 में, जिसके बाद एक बहुत बड़ा, बहुत बड़े स्केल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया इंडियन रेलवेज में कि चाय को हम इंडियन रेलवेज में बेचें। शुरू में चूंकि वो एक सैम्पलिंग करवा रहे थे और फ्री इसलिए भी पिलाई जा रही थी ताकि लोगों में वो आदत डाली जाए। अंग्रेज़ एक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ड्रिंक में, जो बाद में उन्हें समझ में आया कि ये हिंदुस्तानी ये पीने के लायक नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा कम दूध या थोड़ा सा कम चीनी पसंद था, जबकि हमने चाय को एक लस्सी में तब्दील कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अंग्रेज़ों ने यहाँ इसमें भारी एक्सपेंडिचर किया, रेलवेज़ को स्टेशन स्टेशन में फैलाने की कोशिश की, काफ़ी प्राइवेट कंपनीज़ को यहाँ पे बुलावा दिया, और चाय के कंपनीज़ ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई रेलवेज़ को प्रोपेगेट करने के, क्योंकि वो उनके जो ब्रोशर्स हुआ करते थे उनमें काफ़ी बार रेलवे के फोटोग्राफ्स या स्टैम्प्स या डिस्क्रिप्शंस रहते थे।
1947 में आज़ादी और विभाजन के बाद भारतीय रेल इस शताब्दी के सबसे बड़े पलायन का जरिया बना। लाखों लोगों ने रेल पर सवार होकर सीमाएं पार की और उन्हें अभूतपूर्व क्रूरता, हिंसा और बलात्कार का सामना करना पड़ा। ट्रेन में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला सकीना की त्रासदी पर सादत हसन मंटो ने कहानी लिखी खोल दो। गिरजा कुमार ने अपनी किताब द बुक ऑन ट्रायल फंडामेंटलिज्म एंड सेंसरशिप में लिखा,
खोल दो एक मुसलमान लड़की की कहानी है जो स्टेशन पर खो गई और उसको दंगाइयों ने अमृतसर से मुगलसराय जाने वाली ट्रेन से अगवा कर लिया। बाद में 8 मुसलमान नौजवान उस लड़की को वापस उसके पिता के पास पहुंचा देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि लड़की उन्हें रेलवे लाइन के पास बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी। सकीना बहुत सुंदर है, लेकिन जब उसे उसके पिता को सौंपा जाता है तो उस वक्त उसकी हालत एक लाश की तरह होती है। जब उसको देखने आया डॉक्टर उसके पिता से कहता है कि खिड़की खोल दो, तो वो अपनी सलवार उतार देती है, मानो अपने आप पर जुल्म ढाने वालों के आदेश का पालन कर रही हो।
आज भारतीय रेल भारत सरकार का एक तरह से लघु रूप है, संख्या में ज्यादा लेकिन गुणवत्ता में कम। हर दिन भारतीय रेल पूरे देश को जोड़ती है। साल 2015-16 के दौरान रेल के 8 अरब 60 करोड़ टिकट बेचे गए। इसका मतलब यह हुआ कि हर भारतीय ने साल भर में कम से कम 7 बार कहीं ना कहीं जाने के लिए रेल का सहारा लिया। इस समय गरीब से गरीब भारतीय भी गतिमान है। वजह है भारतीय रेल से सस्ता किराया संभवतः दुनिया की किसी रेल में नहीं है। रेहान फतल, BBC दिल्ली।